रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी तीन दिन अति भारी बारिश होने की है संभावना, सावधानी बरतने की मौसम विज्ञान विभाग ने की है अपील। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत सिंधुली की फिक्कर गांवपालिका 2 सुनकोशी नदी में गिरी कार, 3 लोग हुए लापता, तलाश है जारी। बजट आवंटन कुशलता और क्रियान्वयन में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का सभी पालिकाओं से संघीय मामला मंत्रालय ने किया आग्रह। और सूडान के डारफर क्षेत्र में सेना के ड्रोन हमले में 35 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और कुछ क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार आज और मंगलवार बुधवार को कोशी, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि काठमांडू घाटी समेत कई जिलों की छोटी नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा बना रहेगा। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, आवश्यक होने पर सुरक्षित स्थान पर जाने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। सिंधुली की फिक्कल गांवपालिका 2 में मध्य पहाड़ी राजमार्ग पर सुनकोशी नदी में कार गिरने से लापता 3 लोगों की पहचान हो गई है। पुलिस के अनुसार लापता लोगों में कार चालक और निर्माण व्यवसायी दिल कुमार लामा, एक्सकावेटर चालक गणेश थापत था, हेल्पर सूरज मगर शामिल हैं। आज सुबह काठमांडू से उखलढुंगा जा रही एक बस ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार करीब 50 फीट नीचे सुनकोशी नदी में जा गिरी। बाढ़ के कारण राहत और बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल पुलिस और गोताखोरों की टीम लापता लोगों की और कार की तलाश में जुटी है। नेपाली कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल में हुई घटनाओं की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति को औपचारिकता मात्र बताते हुए उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सिंह दरबार में आज हुई संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस ने घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच समिति गठन की मांग को लेकर संसद में दबाव बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी के महामंत्री प्रदीप पोडेल ने बताया कि इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों से भी सहयोग लिया जाएगा। बैठक में सांसदों को जनता से समन्वय और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने पर जोर दिया। सांसदों ने सुशासन, किसानों की समस्याओं के समाधान, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, मानव तस्करी पर रोक और बढ़ती सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। बैठक में कई सांसदों ने कोशी और मध्य प्रदेश की हालिया घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार से शांति और विश्वास बहाल करने की अपील की। वहीं भारत नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों, मानव तस्करी और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए सीमा प्रबंधन मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। शून्यकाल में सांसदों ने रसोई गैस और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए बाजार निगरानी प्रभावी बनाने की मांग की। साथ ही नवलपरासी की सुस्ता, सीमा विवाद और माइती घर में जारी दलित समुदाय के सत्याग्रह पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रीय सभा में आज मधेशी आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2081-82 प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून, न्याय एवं संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम ने यह प्रतिवेदन सदन में पेश किया। बैठक में विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पोडेल ने मध्य प्रदेश में पेयजल, स्वच्छता और जलस्रोत प्रबंधन संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन 2083 भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कम वर्षा, भूजल के अत्यधिक दोहन और जल पुनर्भरण की कमी के कारण मध्य में पेयजल और सिंचाई का गंभीर संकट पैदा हो गया है। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए चूरे भावर क्षेत्र के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 21 सावन को दोपहर 1:15 पर होगी। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने सभी स्थानीय निकायों से बजट आवंटन कुशलता और उसके क्रियान्वयन में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा है कि स्थानीय सरकार संचालन अधिनियम के तहत योजनाएं, आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और उत्पादन मूलक कार्यक्रमों जैसी निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर बनाई जाएं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ स्थानीय निकायों में निर्धारित प्राथमिकताओं से बाहर संस्थाओं के नाम पर बजट आवंटित किए जाने और वित्तीय अनुशासन के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में सभी स्थानीय निकायों से कानून के दायरे में रहकर पारदर्शी और जनहितकारी ढंग से बजट खर्च करने का आग्रह किया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सरकार ने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आधारित फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित अनुदान कार्यविधि पर आज संबंधित पक्षों से सुझाव लिए। सूचना तथा संचार मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार और विशेषज्ञों ने भाग लिया। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा कि चालू आर्थिक वर्ष के लिए निर्धारित 3.5 करोड़ रूपये के अनुदान का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक कार्यविधि आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकारी सहयोग से बनने वाली फिल्मों में नेपाल के इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक मूल्यों का सशक्त चित्रण होना चाहिए। कार्यक्रम में फिल्म कर्मियों ने अनुदान वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और परिणाम मुखी बनाने, स्पष्ट मानदंड तय करने तथा नए और उभरते फिल्मकारों को प्राथमिकता देने की मांग की। मंत्रालय ने कहा कि प्राप्त सुझावों को समेटकर कार्यविधि को अंतिम रूप दिया जाएगा। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने 10% निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देशभर के सरकारी, प्रादेशिक, सामुदायिक, शिक्षण और निजी अस्पतालों के संपर्क अधिकारियों की सूची सार्वजनिक की है। मंत्रालय ने कहा है कि मरीजों की निःशुल्क उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक अस्पताल में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। मंत्रालय के अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की निगरानी और समन्वय को और सख्त किया गया है। अस्पतालों को आरक्षित बेड का विवरण नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन करना होगा। मंत्रालय ने सेवाग्राहियों से अपील की है कि निःशुल्क उपचार से संबंधित जानकारी, शिकायत या सहायता के लिए सार्वजनिक किए गए संपर्क विवरण का उपयोग करें। म्यागदी में काली गंडकी कॉरिडोर के तहत बेनी जोमसुम सड़क भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गई है। जिला पुलिस के अनुसार रघुगंगा गांवपालिका 2 के बैसेरी क्षेत्र में आज दोपहर सड़क के ऊपर से पहाड़ खिसकने के बाद वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सूडान के पश्चिमी डारफर क्षेत्र में सेना के कथित ड्रोन हमले में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। मानवाधिकार संगठन इमरजेंसी लॉयर्स के अनुसार हमला उत्तरी डारफर के गारा अल जाविया गांव में एक पारंपरिक अदालत को निशाना बनाकर किया गया, जहां उस समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतकों में 4 जनजातीय नेता और आरएसएफ के 2 कमांडर भी शामिल हैं। ये इलाका अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र ने डारफर में बढ़ती हिंसा और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। अप्रैल 2023 से सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच जारी गृह युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान को दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बताया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संघर्ष खत्म करने के लिए सोमवार से नई बातचीत शुरू होगी। आज ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और ऐसी कोई योजना भी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ओमान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का कोई रास्ता निकाला जा सके। इससे पहले ट्रंप ने कल रविवार को कहा था कि उन्होंने ईरान पर होने वाले बहुत बड़े हमलों को फिलहाल रोक दिया है। रविवार को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था ईरान को हमले की पूरी जानकारी थी क्योंकि उसने इसकी तैयारी होते देख ली थी। उन्होंने ये भी कहा हम बातचीत के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सोमवार दोपहर से शुरू होगी। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि ईरान और मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों ने उनसे हमले रोकने का अनुरोध किया था क्योंकि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने दावा किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट और परमाणु मुद्दे पर समझौते की संभावना बनी हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी 3 दिन अति भारी बारिश होने की संभावना। सावधानी बरतने की मौसम विज्ञान विभाग ने की है अपील। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत सिंधुली की फिक्कल गांव पालिका 2 सुनकोशी नदी में गिरी कार, 3 लोग हुए लापता, तलाश है जारी। बजट आवंटन कुशलता और क्रियान्वयन में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का सभी पालिकाओं से संघीय मामला मंत्रालय ने किया आग्रह। और सूडान के डारफर क्षेत्र में सेना के ड्रोन हमले में 35 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।